हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उन दोनों का रिश्ता आज एक कदम आगे बढ़ा था और शिविका शायद यही चाहती थी और कहीं ना कहीं करण भी, लेकिन किसी बात को लेकर टेंशन में होने की वजह से करण को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। वो शिविका का सिर अपने बाजू पर रखे हुए उसके करीब लेटा था और न जाने कितनी देर तक उसके चेहरे को ही निहारता रहा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसी वजह से उसकी आंखें एक पल के लिए भी बंद नहीं हुई। जैसे ही उजाला हुआ, सूरज निकलने के कुछ देर पहले ही करण ने एकदम धीरे से शिविका का सिर अपने बाजू पर से हटाया और वहां से उठकर चला गया। अगली सुबह खिड़की से आई हुई सूरज की रोशनी सीधे चेहरे पर पड़ने की वजह से शिविका आंख बंद किए हुए नींद में हल्का सा कसमसाई और इधर उधर हिली डुली। इधर उधर हिलने के साथ ही शिविका ने अपना हाथ बढ़ाकर अपने लेफ्ट साइड पर टच किया, इस तरह से जैसे कि वो कुछ ढूंढ रही थी या फिर शायद किसी को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद था कल रात को यहाँ पर करण के नज़दीक उसके पास ही सोई थी, तो इस वक्त वो बिना आंखें खोले भी उसे ही ढूंढ रही थी, क्योंकि आंखें खोलते ही वो सबसे पहले उसका चेहरा देखना चाहती थी। हाथ से बेड पर इधर उधर टच करते ही शिविका को समझ में आ गया कि इस वक्त अपने बेड पर वो अकेली है, और फिर मुंह बनाकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड होते हुए उसने धीरे से अपनी आँख खोली। लेकिन वो पूरी तरह से उठकर बैठ पाती तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो बेड पर उठकर बैठते हुए उसने उस तरफ ही देखा। शिविका ने उठकर सामने की तरफ देखा तो काफ़ी सारा सामान अलमारी से नीचे ज़मीन में गिरा हुआ था। करण झुककर वो सारा सामान उठाने और समेटने की कोशिश कर रहा था। बहुत ही आलस भरी आवाज़ में शिविका ने जम्हाई लेते हुए कहा, क्या कर रहे हो करण तुम, और इतनी सुबह सुबह रेडी क्यों हो गए? उसे इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि शिविका जाग गई है और इस वक्त उसकी तरफ ही देख रही है, इसीलिए जैसे ही उसने शिविका की आवाज़ सुनी वो एकदम ही चौंक गया। करण ने जल्दी जल्दी वो सारा सामान उठाकर अलमारी में रखा और बोला, वो बस ऐसे ही जल्दी आँख खुल गई तो जल्दी रेडी हो गया एंड गुड मॉर्निंग। शिविका को गुड मॉर्निंग विश करते हुए करण उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर अलमारी का दरवाज़ा बंद करके वो उसकी तरफ ही आने लगा, लेकिन शिविका का मुंह बन गया और वो नाराज़गी दिखाते हुए बोली, बस ऐसे ही नाम का रूखा सूखा सब गुड मॉर्निंग। करण उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया और कन्फ्यूजन से उसकी तरफ ही देखता आगे आया। शिविका ने एकदम किसी छोटे बच्चे की तरह पाउट बनाते हुए कहा, थोड़ी तारीफ़ ही कर देते या गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल वाइफी ऐसा कुछ बोल देते, गुड मॉर्निंग किसकी उम्मीद तो तुमसे रखती नहीं मैं वैसे भी। इतना बोलते हुए शिविका ने अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांध लिए, लेकिन वो इसके आगे और कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही करण ने आगे जाकर उसके पाउट बने हुए होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे कुछ सेकंड के लिए किस करके दूर होता हुआ बोला, अरे क्यों नहीं, किसकी उम्मीद अपने हस्बैंड से नहीं रखोगी तो फिर। उसकी ये बात सुनकर शिविका के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ गई और हल्के से करण के कंधे पर मारते हुए वो आगे जाकर उसके गले लग गई और बोली, थैंक्स फॉर दिस रियली वेरी गुड मॉर्निंग। इतना बोलते हुए शिविका ने हल्के से करण के गाल पर भी किस कर लिया और उसके किस करने पर करण के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई। कुछ पल बाद थोड़ा सोचते हुए करण ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखा और बोला, शिविका मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बहुत ज़रूरी जो कि तुम्हें जानना ज़रूरी है। उसकी बात सुनकर शिविका ने बहुत ही आराम से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ बोलो ना क्या बात है। इतना बोलकर वो अपना नाइट गाउन पहनते हुए वहां से उठने लगी और उसकी तरफ देखते हुए करण ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की और एक ठंडी सांस छोड़ते हुए वो खुद को कुछ बोलने के लिए तैयार के ही रहा था कि तभी किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। मम्मा पापा उठ जाओ आप दोनों भी अब, बाहर से काव्या की आवाज़ आई जिसे सुनकर वो दोनों ही दरवाजे की तरफ देखने लगे और शिविका ने आगे आते हुए दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि करण बेड पर ही बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट नजर आने लगी क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से खुद को इस बात के लिए तैयार कर पाया था जो कुछ भी उसे शिविका को बताना था, लेकिन ठीक उसी वक्त काव्या वहाँ पर आ गई और वो उसे ये बात नहीं बता पाया। दरवाज़ा खोलते ही शिविका ने काव्या को गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, अरे वाह मेरी बेबी तो आज इतनी जल्दी रेडी हो गई है। हाँ मम्मा काव्या गुड गर्ल है ना, टाइम पर स्कूल जाएगी, काव्या खुश होते हुए बोली और फिर वो शिविका की गोद से उतरकर करण के पास आ गई और शिविका भी फ्रेश होने के लिए चली गई। करण काव्या को लेकर नीचे आया और उसके साथ ही ब्रेकफास्ट करने लगा। कुछ देर के बाद शिविका ने भी उसे ज्वाइन किया, लेकिन करण कहीं खोया हुआ सा लग रहा था। शिविका काफी दिनों से ये बात नोटिस कर रही है और उसे लगा था कि कल रात उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद अब काफी कुछ तो चेंज हो जाएगा उनके बीच, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर के बाद उन दोनों ने ज्योति और ड्राइवर के साथ काव्या को उसके प्री स्कूल भेज दिया और वो दोनों वहां से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी उनके कानों में तेज आवाज पड़ी ऋषभ के चिल्लाने की, कितनी बार कहूं मैं आपसे नहीं चल सकता, मैं आप सबके हिसाब से नहीं कर सकता वो सब जो आप लोग चाहते हैं, क्योंकि मैं इंसान हूं, कोई रोबोट नहीं जो आप लोगों के हिसाब से चलूं। ऋषभ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शिविका और करण दोनों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों भागते हुए शिविका के पापा के रूम में आए क्योंकि ऋषभ इस वक्त वहां पर ही था। शिविका समझ गई कि उसकी जरूर पापा से ही बहस हो रही होगी क्योंकि ऋषभ की अपने पापा से ही बहस होती थी, बाकी घर में उसे और कोई कुछ भी नहीं बोलता था। शिविका और करण दोनों एक साथ ही वहां पर आए और करण सारी सिचुएशन समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी शिविका ने कहा, क्या है ऋषभ, तुम पापा पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पता है ना तुम्हें, और तुम हो कि? शिविका ने ऋषभ को लगभग डांटते हुए ये बात कही, जिसे सुनकर ऋषभ का मुंह बन गया। उसने तुरंत ही अपनी सफाई में कहा, हाँ तो कौन सा मेरी वजह से तबीयत खराब रहती है, वो तो वैसे भी इतने हेल्थ इश्यूज हैं, ऐसे में क्यों बार बार मुझे परेशान करते हैं एक ही बात को लेकर, जबकि मैं बोल चुका हूँ मुझे ऑफिस नहीं जाना, और उनके कहने पर इस बार कॉलेज तो कंप्लीट कर ही रहा हूँ ना, नेक्स्ट वीक से मेरे एग्जाम्स हैं और इस बार मैं पास भी हो जाऊंगा। ऋषभ का एटीट्यूड देखकर शिविका को इस बार उस पर बहुत गुस्सा आया और उसकी साइड लेने की बजाय वो भी उसे ताना मारते हुए बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि एहसान करोगे हम लोगों पर, चार साल के ग्रेजुएशन को छह सात साल में क्लियर करके कौन सा बड़ा तीर मार लोगे, और वैसे भी तुम्हारी ऐसी डिग्री और मार्क देखकर कौन सा बाहर तुम्हें कोई जॉब मिलेगा, ऐसे में अगर पापा तुम्हें कंपनी ज्वाइन करने को बोलते हैं तो इसमें क्या बुराई है? हाँ तो वैसे भी मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें कि डिग्री की जरूरत पड़ती हो, आप लोगों को पहले से ही पता है मेरे अपने ड्रीम्स हैं, मेरे अपने गोल्स हैं, मैं उनके पीछे ही जाना चाहता हूँ, इन सब में नहीं पढ़ना चाहता जिसमें आप पड़ी हुई हो। ऋषभ ने भी पूरे एटीट्यूड में ये बात कही और बिना रुके वहां से चला गया, जबकि करण तुरंत ही उसके पीछे आता हुआ बोला, नहीं ऋषभ रुको, तुम उसे गलत समझ रहे हो, वो बस तुम्हारा भला चाहती है।
करण ने तेज आवाज में चिल्लाकर ऋषभ को रोकने के लिए ये बात कही, लेकिन ऋषभ ने उसकी भी एक बात नहीं सुनी, तो करण उसके पीछे ही वहां से जाने को हुआ। उसे लगा शायद वो ऋषभ से अकेले में बात करके उसे कुछ तो समझ सकता है, लेकिन तभी शिविका ने दूसरा हाथ पकड़कर करण को रोक लिया और बोली, रहने दो करण, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी इंसल्ट करे, इसीलिए छोड़ दो उसे उसके हाल पर, वो वैसे भी कभी किसी की नहीं सुनता है, जब पैसे चाहिए होंगे ना तो खुद ही वापस आएगा। शिविका की ये बात सुनकर करण को भी थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि वो हमेशा ही ऋषभ को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन आज पहली बार ही उसने ऋषभ के खिलाफ बोला और अभी भी वो उसकी फिक्र नहीं कर रही। तो करण ने थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं पूछा, और कुछ देर के बाद वो दोनों एक साथ ही वहां से ऑफिस के लिए निकल गए। लेकिन करण के मन में जो बात चल रही थी और वो अब तक शिविका से नहीं कर पाया, उसके दिमाग में वही बात घूम रही है। उसने ऑफिस में भी एक दो बार शिविका से उस बारे में बात करने को कहा, लेकिन बीच बीच में बार बार कोई काम आ जाता था, कभी कोई फोन कॉल या कुछ और, उसे ऐसा लगा जैसे कि शिविका जानबूझकर उसे वो बात नहीं करना चाहती है, उसकी बात सुनना नहीं चाहती और उसे इग्नोर कर रही है। लेकिन फिर करण को लगा जब शिविका को पता ही नहीं है कि वो उसे क्या बताने वाला है, तो वो उसकी बात को जाने बिना ही इग्नोर करेगी, इसीलिए उसे लगा कि शायद बस उसे ही ऐसा लग रहा है, असल में ऐसा कुछ नहीं है, बस सिचुएशन ही वैसी नहीं बन पा रही है कि वो उससे बात कर पाए। इसीलिए करण ने मन ही मन फैसला किया कि घर वापस जाने के बाद ही वो शिविका से इस बारे में बात करेगा। टू बी कंटिन्यूड।